نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرشد قل اللهم صل اکثر لوگوں کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے سوالات بھی کیے اس موضوع کے اوپر کہ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور جو اولی اللہ ہوتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں تو یہ محفوظ ہونا کیا ہوتا ہے کیا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے یعنی بہت سے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے تو بھائی پہلی بات تو انبیاء کرام کو تو معاملہ بالکل ہی کلیئر ہے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور وہ اللہ پاک نے ان کو اتنا پاک بنایا ہے لیکن انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ پاک نہیں ہوتا اور وہ ان کا جو ہے اس حساب سے پاک نہیں ہوتا جس حساب سے انبیاء کرام ہوتا یعنی ان سے غلطی کا امکان رہتا ہے چوک ہو سکتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے معصوم صرف اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے عقیدہ یہی ہے آج کی بات نہیں کہ پاک ذات صرف انبیاء کرام کی ہے اب یہ جو اولیاء اللہ یا اللہ کے جو نیک مقبول بندے ہوتے ہیں یہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ کر دیے جاتے ہیں گناہوں سے محفوظ کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے ابھی تو گناہوں سے حفاظت کی جاتی ہے تو کیا مطلب کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں اولیاء اللہ متقی پرہیزگار یا نہیں چاہتے گناہ حفاظت کا کیا مطلب ہے اب اس کے بارے میں کچھ مختلف مشائخ نے مختلف باتیں بیان کرنی محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو کوئی بھی سچا اللہ والا دو نمبر اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا جو سچے اللہ والے متقی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلی بات اللہ کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شدید عشق اور محبت ان پر حاوی رہتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف یا کسی گناہ کی لذت کی طرف یا نامحرم عورتوں لڑکیوں کی طرف اتنا نظر التفات نہیں کرتے ان کا دل ان کا اتنا زیادہ اس طرف چاہتا نہیں ہاں وسوسے ان کو بھی آ سکتے ہیں مشائخ فرماتے ہیں وسوسے تو گندے بڑے بڑے قطب اور غوث کو بھی آ سکتے ہیں وسوسوں سے تو اور درجہ ایمانی میں تقوی میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہ کرے تو بہرحال تو یہ جو بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی وسوسے آتے ہیں لیکن وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو یہ محفوظ کیسے ہوتے ہیں کیا ان کا دل نہیں چاہتا گناہوں کا گناہ کا پھر بھی تھوڑا بہت چاہتا ہوگا دل رغبت بھی ہوتی ہے لیکن اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے گا کہ اپنے نفس کی محبت گناہوں کی محبت حرام لذتوں کی محبت دوسری طرف اللہ رسول کی محبت دیکھتے ہوئے اللہ رسول کی محبت کو بہت بڑی ایک پہاڑ کی شکل میں دیکھتے ہیں اور جو نفسانی خواہش کی جو ان کی جو تڑپ ہوتی ہے یا اگر کوئی نفس میں کوئی ٹکپ بھی ان کے ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے چھوٹا سا ٹیلا کہاں پہاڑ کہاں ٹیلا تو کیا چیز حاوی رہے گی بھائی بڑا پہاڑ حاوی رہے گا نا کہ غلبہ جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت کا معمولی سا تھوڑا سا غلبہ جو ہے نفس کا بھی ہے مثال کے طور پر تو کون سی چیز جیتے گی کون سی چیز حاوی رہے گی جو چیز وافر مقدار میں اشد محبت کا خزانہ تو اللہ رسول کی رکھتے ہیں تو اس محبت کی وجہ سے پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیتے ہیں اگر کوئی وسوسے بھی آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی نمبر دو اللہ کی طرف سے جو ان کو جو خاص تعلق اور جو ایک روحانی کیفیات اور ان کے اوپر جو کشف الہام ہوتا رہتا ہے اللہ کی جو تعلق اللہ کی جو برسات ہوتی رہتی ہے انوارات ان کے اوپر جو نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور جو اللہ سے جو ان کا خفیہ رابطہ رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے کیونکہ ایک آدمی جو 5 لاکھ کی سیلری لے رہا ہو مثال کے طور پر اس کو کوئی آفر دے بھائی آپ آئیے آپ 1 لاکھ روپے میں میرے آ جائیے تو ہنسے گا کہہ رہے بھائی 5 لاکھ تو مجھے مل رہے ہیں میں 4 لاکھ لاس کر کے آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہوں 5 سے اوپر کی بات کرو تو میں آتا ہوں سوچتا ہوں کچھ تو ایک انسان کی فطرت ہے انسان کم موضوع سے زیادہ موضوع کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کے باطنی ایسے ان کے معاملات روحانی معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں خفیہ رابطہ اور مزے آ رہے ہوتے ہیں ان کے کہ پھر وہ دوسرے جو مزے ہوتے ہیں الٹے سیدھے گندے یہ بالکل ایسے لگتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح کہتے ہیں ان کی تو کوئی اوقات ایسی نہیں ہم زیادہ مزے کو چھوڑ کے کم مزے پہ کیسے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے گناہوں میں محافظت کا ذریعہ بنتی ہے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے کئی اس کی تشریحات ہیں تو جو بس جو بھی دل میں بھی آ رہی ہیں एक तो अल्लाह और रसूल का इश्क मोहब्बत का खजाना होता है, दूसरी वजह जो होती है कि वो जो उनको जो रूहानी जो अल्लाह से जो ताल्लुक होता है, जो बातनी मामला कश्फ इलाम पे उनको मिल रहे होते हैं, उसकी वजह से वो गुनाहों की गंदगी की तरफ माइल नहीं होते, गुनाहों से बचते हैं। ये भी हिफाजत का तरीका है। इनको पता है अगर मैं इन चक्करों में लगूंगा तो ये बड़े बड़े चले जाएंगे, ये तो बेकार, क्योंकि वो दोनों चीजें देख रहे होते हैं, गुनाहों की हराम लज्जतें भी देख रहे होते हैं, उसके मजे भी उनको पता होते हैं, और जो सही मानो जो लजे मजे वो कशीद कर रहे होते हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो भी देख रहे होते हैं। तो अकलमंद आदमी भाई वही होता है ना, तो ज्यादा हर इंसान की फितरत से मिसाल दी कि हर आदमी ज्यादा मजे की तरफ जाता है, तो इसलिए गुनाहों से उनकी हिफाजत होती है, गुनाहों की इतना माइल नहीं होते। नंबर तीन, के अल्लाह की तरफ से जो उन पर जो कुछ मुकाशफात होते रहते हैं वो उसके आदि बन चुके होते हैं, उनके टॉनिक का काम करता है, उनकी सांस का रूह का काम करता है वो ताल्लुक माल्ला, वो बताते नहीं अल्लाह वाले, तो उनको पता है कि अगर मैंने ये चीजें शुरू करी तो अंधेरा आ जाएगा सामने, और सारी चीजें जो मुझे ये मराहत मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है, जो अल्लाह पाक आउट ऑफ टर्न मेरे साथ स्पेशली तरीके से चल रहा है, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस वजह से भी उनकी गुनाहों की तरफ नहीं माइल होते, ये भी एक हिफाजत का जरिया होता है। ठीक है भाई, बिलफर्ज मिसाल है ये, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, बिलफर्ज अगर कोई अल्लाह सच्चा अल्लाह वाला अगर किसी गुनाह की तरफ माइल होना भी चाहे खुद से इरादे के साथ और उसको गुनाह का मौका भी मिले, तो फिर उसकी पिटाई भी सख्ती से के साथ होती है, उठा के फिर पटक भी दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, शुरू में टाइट कर दिया तो ऐसा टाइट किया जाता है ये चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि तुम हमारे होके गैरुल्लाह की तरफ जाते हो, शर्म नहीं आती, हमारी इनायत है, हमारी मोहब्बत है, हमारे एहसानात भूल गए, बड़े बड़े इसके तुम दावे करते थे, ये क्या हरकत करी तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से फिर सजा मिलती है। पहले अल्लाह प्यार से समझाते हैं, मोहब्बत से समझाते हैं, बिल्कुल अगर कोई अल्लाह से भागना भी चाहे, हजरत वाला फरमाते थे इसी बात को, भुला रहा हूँ फिर भी वो याद आ रहे हैं, अगर कोई अल्लाह को भुलाना भी चाहे कि मैं अल्लाह को भुला के छोड़ो यार बस बहुत कर लिया अल्लाह अल्लाह, तो मैं हराम मजे गुनाहों को उठाऊंगा, तो हजरत ने फरमाया भुला रहा हूँ फिर भी वो याद आ रहे हैं। अल्लाह ऐसी कैफियत ऐसा मामला शुरू कर देते हैं कि वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हो पाते। और दूसरी बात है कि अगर गुनाह की तरफ जाते भी हैं और गुनाह करते भी हैं तो अल्लाह से इश्क मोहब्बत और खौफ खुदा की वजह से उनकी गुनाह करते वक्त भी उनको वो लज्जत हासिल नहीं होगी जो दुनियावी गुनाहगार लोगों को हासिल है, क्योंकि जब गुनाहगार आदमी जब गुनाह करता है तो अल्लाह का खौफ दिल से निकाल के निडर होकर दबा के गुनाह करता है, तो पूरा गुनाहों से लुफ्फंदोज होता है वो। अल्लाह ना करे कोई मुत्तकी परहेजगार बंदा हो, अल्लाह वाला हो, और कभी नफ्स और शैतान में बहकावे में आकर वो गुनाह करेगा तो उसका दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह के आगे शर्मिंदगी और इतनी ज्यादा उसका एहसास निदामत होगा दौरान गुनाह भी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन कर भी रहा होगा तो पता चला 70% तो मजा ऐसे ही खत्म हो गया गुनाह का, क्योंकि खौफ और डर इतना है तो क्या वो गुनाह का मजा हासिल करेगा भाई, सही है ना। तो इसी तरह हजरत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत ये बताइए वो आरिफ बिल्ला बुजुर्ग अल्लाह का वली हो, क्या उससे जिना हो सकता है? तो थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाया कि भाई होता तो नहीं आम हालात में, महफूज कर दिए जाते हैं अल्लाह वाले गुनाहों से, लेकिन ये नहीं कह सकते उनसे गुनाह नहीं हो सकता, हो सकता आरिफ बिल्ला से भी जिना, लेकिन याद रखना अगर कोई सच्चा अल्लाह का वली है और आरिफ बिल्ला और उससे अगर जिना हो गया तो फिर उसकी तौबा भी आरिफ बिल्ला के मुकाम की होगी, अर्श के पाए हिला देगा रो रो के, अर्श के पाए हिला देगा रो रो के, क्योंकि जिस इंसान जिस मुकाम से गिरता है फिर उसकी तौबा भी उसी मुकाम की होती है, और फिर जब तौबा कर लेता है तो पिछले दर्जात में और इजाफा हो जाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह पाक मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों, सच्ची अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह सब आम लोगों को सबको माफ कर देते, तो भाई अपने प्यारों को क्यों नहीं माफ करेंगे, लेकिन ऐसा आम हालात में होता नहीं है, है ना। तो ये महफूज करने के कुछ तरीके भी होते हैं, अब जैसे बचाने के यानी गुनाहों से, अब कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो मेरी जिंदगी में मुशाहदे में आए, कुछ मेरे जानने वाले हमारे पीर भाई एक्सपर्ट जो भी है बारह उससे मतलब नहीं है, असल तो मकसद समझ रहे हैं। अब इसकी मिसालें क्या है, अल्लाह पाक और मजीद किस किस तरह से बचाते हैं, प्यार और मोहब्बत से भी अल्लाह पाक बचाते हैं गुनाहों से, हिफाजत फरमाते हैं। एक हमारे अजीज थे, उन्होंने बताया कि कोई लेडी डॉक्टर थी, वो सऊदीया में रहते थे और वो नेक आदमी थे, लेकिन वही बात कि इंसान इंसान होता है, नफ्स और शैतान सबके साथ लगे होते हैं, तो बीवी से भी उनकी अलहदगी हो गई थी, तो कोई लेडी डॉक्टर थी तो उनसे कोई उनकी दोस्ती वगैरह हो गई, फिर वो अच्छी लगने लगी, तो उन्होंने कहा चलो फिर वो भी फिर उनसे भी बातचीत शुरू हो गई, फिर एक दफा उन दोनों ने कहा चलो भाई फला रेस्टोरेंट में जाके मिलते हैं, फिर उन्होंने सारा इरादा भी कर लिया, टाइमिंग भी सेट हो गई, सब कुछ हो गया। फिर वो उस एहतमाम के साथ नहा रहे थे कि मुझे तैयार होना भी, जैसे इंसान के जाता है नहाता धोता तैयार होता है, तो जब वो नहाने लगे तो उनके दिल में से आवाज आई नहाने के दौरान, क्या आवाज आई, उनका नाम लेके किसी ने कहा कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, कभी तुम हमारी मोहब्बत में तो ऐसे नहा धो के तैयार होके नहीं दूंगे, हमारी मोहब्बत में एक औरत के लिए तुम इतना इंतजाम करो, नहा रहे हो धो रहे हो, उतने कपड़े तैयार रखे हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम के तुम्हें, आज एक औरत से डेट लगानी है तुम्हें, तुम हमारी मोहब्बत में तो इस जोश और जज्बे मोहब्बत के साथ कभी तुम नहीं नहाए, कभी तैयार नहीं हुए। बस उन्होंने कहा कि बस मेरा नहाना दूभर हो गया, मैं वहीं फूट फूट के रोया, घर में अकेले तना, कह रहा जो मैं रोया गुस्ल के दौरान, कह रहा मुझे पता नहीं मैं कब तक रोता रहा, कब तक मैं बैठ गया, मैं लेट गया, मैं गुस्ल खाने में पता नहीं कब मैं बाहर आया, क्या मेरी कैफियत थी। बस फिर मैं उसके बाद कपड़े वपड़े तो क्या मैं पहनता उस हिसाब से, कह रहे फिर मैंने दूसरे कपड़े पहने, शलवार कुर्ता लगाया, फिर मैं सीधा मस्जिद चला गया, फिर सलात तवा पड़ी और फिर वहां आधे घंटे तक रोता रहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ने उनकी गुनाहों से मुहाफजत फरमाई, हिफाजत फरमाई, प्यार से ही मार दिया अल्लाह ने, सिर्फ सख्ती थोड़ी करते हैं, शर्म से ही मार दिया अल्लाह ने, ये कहलाता है अल्लाह का फजल। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो नेक होते हैं, अल्लाह वाले नहीं भी है, सवाल ये कोई जरूरी थोड़ी, को पूरा अल्लाह का वली अगर कामिल होगा तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आइंदा मुस्तकबिल में अगर किसी को अल्लाह का वली बनना है, अब उसको नहीं पता होता कि मुझे आइंदा अल्लाह का वली बनना है, हम गैर थोड़ी जानते, लेकिन अल्लाह के मामलात में लिखा हुआ, अल्लाह को मालूम है कि ये जालिम भाग रहा है हमसे और उसको ये पता नहीं है कि आगे चल के इसको हमारा बनना है, विलायत उमर इसको मिलनी है, तो अल्लाह को तो पता है। हजरत काला हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह की अल्लाह कब्र को नूर से भरे, क्या बात फरमाते थे कि बस एक एक बात उनकी ऐसी थी कि बस जान भी कुर्बान कर दो तो हक अदा नहीं होता। फरमाया कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं माजी में कुछ और होते हैं, माजी में कुछ और होते हैं और हाल में कुछ और होते हैं, मुस्तकबिल में कुछ और होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें अपना माजी का पता होता है या हाल का पता होता है, मुस्तकबिल में हमारे हमारे लिए क्या अल्लाह की तरफ से चीज होने वाली हमें नहीं पता, इसलिए अल्लाह को सब पता होता है। अल्लाह को पता होता है कि ये माजी में कैसा था, हाल में कैसा, और आइंदा इसको हम ये गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, और आइंदा इसको किस राह के ऊपर हमें डालना है और किस मुकाम तक इसको पहुंचाना है। तो वो जो खातून थी बहरहाल, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर बहुत फोन करते रहे, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, जब फोन करे लाइन काट दी, अल्लाह की मोहब्बत का गलबा इतना मोहब्बत का इनके ऊपर हो गया कि फिर वो उस औरत से कभी नहीं मिले। तो ये भी एक अल्लाह का तरीका होता है गुनाहों से बचाने का। फिर उन्होंने कहा ऐसा ना मुझे दोबारा नफ्स और शैतान पे, हम लोग समझदार आदमी थे। फिर वो एक अल्लाह के वली से फिर वो बैत हो गए, फिर उन्होंने दाढ़ी भी रख ली, सही है। तो जरूरी नहीं वो पूरा कामिल होगा तो अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, चूंकि मुस्तकबिल में अगर किसी को अल्लाह का वली बनना है तो वली बनने से पहले से ही अल्लाह पाक शुरू से इसको बचाएंगे, इसको लाइफ से बचाएंगे, और खराब लड़कों की तरह से बच्चा होगा, छोटा होगा, बिगड़ना चाहेगा दूसरे लड़कों की तरह से, लेकिन वो बिगड़ नहीं पाएगा क्योंकि ऐसे हालात बनेंगे कि फौरन ही वो कर दिया जाएगा, जबकि छोटा है भी तो स्कूल में पढ़ा है, लेकिन नहीं अल्लाह को पता आगे इसको किस मुकाम पे पहुंचना है। एक अहादीस शरीफा का वाकया याद आया, हमारे प्यारे आकिद जहां सलम जब बहुत ही छोटे मासूम बच्चे थे तो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे थे, नशरुद्दीन बी विक्रिल नबी हबीब सल्लम में वाक्य लिखा हुआ है। तो उसमें क्या वो बच्चे छोटे थे, बिल्कुल ही नासमझ छोटे छोटे, तो बहुत से जो बच्चे थे वो अपनी जो लंगोट वगैरह जो कुछ भी थे वो उस तरह से उतार रहे थे खेल में, ऐसी कोई खेल चल रहा था, तो आफिसम भी छोटे थे, आफिसम भी ने भी कोशिश करी इस तरह से, लेकिन वो भी हाथ ही लगाया था तो फौरन जिब्राइल अमीन आया और उनको पकड़ लिया, क्योंकि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, आप इन जैसे नहीं हो, आप इन बच्चों की तरह से नहीं है। वही बात, आप सब तो बच्चे थे, उनको थोड़ी पता था कि आगे के क्या मामला मेरे होने वाले, लेकिन अल्लाह को सब पता था। तो कच्ची मामूली से बचपने मासूमियत ने भी अल्लाह पाक ने गवारा नहीं किया कि इस तरह से आम बच्चों की तरह से ये खेले, इस तरह का खेल, क्योंकि अल्लाह को सब पता है, बंदे को ना पता हो, हमें नहीं पता होगा आगे हमारे साथ क्या मामला होने वाले हैं। तो अल्लाह पाक शुरू से ही ऐसे लोगों को बचा के रखते हैं, मुहाफिजत करते हैं गुनाहों की। कितने लोग मिले हफ्ते वाले, कह रहा भाई हमें तो ये आशिक माशू की राशि नहीं आई, सिवाय जिल्लत के पढ़ाई के कुछ नहीं मिला, दूसरे लोग तो बड़े जबरदस्त चलते हैं कुछ भी नहीं होता, हम तो राह भर ऐसी कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, जरील होते हैं, पढ़ाई लगती है, क्या मेरी किस्मत। तो भाई एक अल्लाह वाले ने कहा अरे तेरी किस्मत चार चांद लगे तेरी किस्मत को, चार चांद लगे तेरी किस्मत को, जालिम अल्लाह तेरी गुनाहों से हिफाजत कर रहे हैं, तुझे अपना बनाना चाह रहे हैं, तुझे अपना प्यारा बनाना चाह रहे हैं, तुझे गैरुल्लाह का होने नहीं दे रहे, तो ये अपना मोहताज बना के रखना चाह रहे हैं। ये कोई बुरा मानने की गुस्से की बात नहीं है। अरे जालिम, अल्लाह खिलाना चाह रहा है तुम्हें कढ़ाई, तुम कह रहे हो मैं तो सड़ी हुई बदबूदार अदरक की दाल खाऊंगा कल रात की बासी, उस पे अलावा है। अल्लाह कह रहे हैं छोड़ ये ले कढ़ाई का, हम कह गए नहीं मुझे जो कल की बासी अदरक की बदबूदार दाल है वो खाऊंगा। तो हमारा तो ऐसा मिजाज हो गया भाई, अल्लाह खिलाना चाह रहे हैं कुछ, अल्लाह देना चाह रहे हैं आला बढ़िया मामला, लेकिन हमारी सोच में नहीं आता। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, साहबी रसूल, अगर किसी लड़की का हुस्न तुम्हें बहुत ज्यादा दीवाना करे और तुम हिजानी कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, तो तुम उसके पेट के अंदर जो आलाइश गिलाजत है यानी पेशाब पाक पखाना गैसेस पखाना, उसका वाला तसव्वुर कर लिया करो, तो तुम्हारी खोपड़ी में इतदाल आ जाएगा। और हजरत पारस की तशरीह में फरमाते थे कि वरा बैतुल खला में तसव्वुर कर लिया करो कि तुम्हारा महबूब माशूक जिसके लिए तुम रो रहे हो वो बाथरूम में बैठा हुआ हग रहा है, वो तो हगने वाली कैफियत क्या होगी, सही ना। और फिर वरा से तुम तसव्वुर करना है, हकीकत में नहीं करना है, कभी वॉशरूम खोल के भी झांक लो तो सारा जो इश्क का भूत ना सारा उतर जाएगा नाक के जरिए, दिमाग सेट हो जाएगा उसकी बदबू की सड़ान से पखाने की, तो सारा जो माशूक का जो इश्क है ना, जो आंसू जो बहाए जा रहे हैं उसमें इतदाल आ जाएगा। अरे ये आंसू तो अल्लाह ने अपने दिए कि हमारी मोहब्बत में रो, कम वक्त तुम कहां कहां गंदी गटर लाइनों की नहीं रो रहे हो, तुम सोचना चाहिए कहां जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। औरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि गधे के पेशाब से बदतर है वो आंसू जो किसी लड़की के इश्क में निकले, गधे के पेशाब से बदतर है वो आंसू जो किसी औरत के लिए किसी लड़की की मोहब्बत में टपके, सोचना चाहिए। आंसू अल्लाह की मोहब्बत में निकलने चाहिए, तौबा इस्तिगफार में निकलने चाहिए, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में निकलने चाहिए। और फिर अल्लाह वो मजे कराते हैं जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जिनसी मजे तो कुछ भी नहीं है, वही बात कि जिसको पता ही नहीं ये 10 लाख की सैलरी क्या होती है, जो 1 लाख की सैलरी पर खुश हो उसको क्या पता। अरे जालिम आगे तो बढ़, जिसको पता ही नहीं है कि ये जिना बदकारी से बढ़ के भी कुछ मजे होते हैं, तो उनको क्या पता बेचारों को, वो तो कुएं के मेढक बने उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। जैसे दस्तरखान होता है ना, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक मिसाल देके इस बात को यूं समझाया, दस्तरखान बहुत लंबा लगा हुआ है, शुरू में जो दस्तरखान के शुरू में जो है दाल चटनी बासी रोटी है, लेकिन जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ेगा वरा तकलीफ उठागे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खानों की डिशेज में भी क्वालिटी नजर आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त कीमा और फिर दूसरी मरगूबात जबरदस्त मरगूब चीजें नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा उसको आगे जाना पड़ेगा। तो ये फरमा के मौलाना रूमी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो मुजाहिदा और गुनाहों से बचने की तकलीफ जिनको गवारा नहीं होती, तो वो लज्जतों का एक दस्तरखान बिछा हुआ है। तो कहते हैं यार कौन अब इतना मुजाहिदा तकलीफ करे, वो जो थोड़े से जो मजे आ रहे हैं बदकारी जिना में चलो यही कर लो, तो उसी पर वो दस्तरखान के शुरू में ही बैठ गए पुरानी बासी दाल के ऊपर। लेकिन जो जिनको शौक होता है ज्यादा मजों का, वो कहते हैं नहीं भाई मुझे दाल पसंद नहीं है, वो जो आगे मुझे ये जो कढ़ाई और बिरयानी नजर आ रही है मैं तो वो खाऊंगा, तो थोड़ा सा उसको जरा आगे जाना पड़ेगा, तो जरा मुजाहिदा मुशक्कत करके आगे जाएगा तो वो पालेगा। इसलिए हर आदमी का अपना जर्फ होता है, वो कितने मजे कशीद करना चाहता है, कितने मजे कशीद करना चाहता है। अल्लाह जल्ला जलालुहू व तआला शान। तो एक मिसाल तो भाई ये दे दी कि गुनाहों से बचाने की, जैसे ये डॉक्टर ये साहब का जो वाकया बताया, नहाते में अल्लाह पाक ने इनकी कैफियत बना दी और फिर वो गुनाहों से बाज आ गए, महफूज कर दिए गए गुनाहों से। इसी तरह एक साहब थे, उनका भी ऐसी मामला था। तो ये वो वाकया बता रहा हूँ दो लोगों के, कि जो बाद में अल्लाह के वली बने, लेकिन जिस वक्त उनको अल्लाह ने बचाया उस वक्त वो विलायत उनको नहीं मिली थी, उस वक्त वो मुत्तकी नहीं थे, चूंकि अल्लाह को पता आइंदा मुस्तकबिल में हमें इनको अपना वली बनाना है, तो अल्लाह पाक शुरू से हिफाजत करते हैं। तो जिनको आगे मुस्तकबिल में अल्लाह का वली जिनको बनाना है, अल्लाह जिनकी शुरू से हिफाजत कर रहे हैं, तो जो वली अल्लाह बन चुका होगा तो अल्लाह उसकी कितनी हिफाजत करेंगे, फिर उसकी तो खास हिफाजत की जाएगी। तो दूसरा वाक्य भी इसी तरह का है कि वो एक साहब थे, ऑफिस में थे, तो ऑफिस कुलीग से भी कुछ मामला उनके हो गए, उनसे भी कुछ टाइम सेट हो गई फला जगह मिलेंगे। तो हुआ क्या, उनका एक छोटा भाई था, शादी हुई नहीं थी, कुंवारे थे, भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, दीवाने थे। तो जैसे ही वो टाइम सेट था जब जाना था, बिल्कुल फिट भाई, अचानक भाई को दौरा पड़ गया, उनके मिर्गी का दौरा। अब टाइम क्या, जब बिल्कुल तैयार वैयार हो गए, बस जो टाइम था उसमें जाने के लिए बैठ रहे थे गाड़ी में, अब भाई पे दौरा पड़ गया भाई। अब उसने कहा ये क्या मुसीबत बला आ गई, भाई की बड़ी मोहब्बत, अब हुआ क्या, एक बंदे का जो गुनाहगारी हो, चाहे अल्लाह का वली नहीं भी है, लेकिन पता होता है कि जो परेशानी आई है मैंने क्या किया है, 90% पता होता है कि दिस इज टू दिस, मैंने क्या किया है जो ये हुआ है, ऐसे नहीं पता होता बंदे को, सब पता होता है अक्सर, बहुत कम ऐसा होता है बंदे को पता ही नहीं और उस पर को परेशानी आ जाए। तो बहरहाल वो कुछ ताल्लुक माल्ला रखते थे, वो कुछ अल्लाह का फजल था, भाई को दौरा पड़ा तो सब में रोना पीटना मच गया, भाई ये क्या हो गया, इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ गया, मुंह से झाग निकलना, मैंने कहा हुआ क्या, बिल्कुल सही बैठे बैठे अचानक ना बीमार ना कुछ, बस फौरन दिल में से आवाज आई, उन्होंने दिल में बात आ गई, बस ये अल्लाह पाक ने मेरी इसलाह के लिए मेरे भाई को ये कर दिया ऐसा, और मैं गुनह की तरफ जाना था। बस उन्होंने उसी वक्त दूसरे कमरे में गए और रो रो के दरवाजा बंद करके सजदे में जाके रो के माफी मांगी, अल्लाह माफ फरमा दे, आइंदा मैं कभी उस औरत से लड़की से नहीं हूँ, तो सच्ची तौबा कर ली, बस अल्लाह पाक मेरे भाई को सही कर दे। कहने मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे, मैं आया हूं तो भाई बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दुआ, ना सलातुल आजा, सिर्फ उस गुनाह से बचने की तौबा करी, यूं अल्लाह पाक ने भाई को सही कर दिया। फिर भाई सही होगा, फिर भूल भाल गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, चंद दिनों फिर वहां से दबाव बढ़ा, भाई आए नहीं मिलने, उस दिन भी नहीं आए थे, नफ्स और शैतान ऐसे थोड़ी होते हैं, इतने आसानी से थोड़ी कंट्रोल में आते। फिर दोबारा टाइम सेट हुआ, भाई अब भूल भी है कि भाई की तबीयत खराब हुई थी, 2-3 महीने आ गया, ना हो गई भी शायद ऐसे तबाह होगा। फिर टाइम सेट हुआ, फिर जाने लगे, जैसे ही घर से निकलने लगे भाई की फिर तबीयत खराब, मिर्गी का दौरा। तो इस तरह 3-4 बार हुआ, 3-4 बार, फिर उन्होंने हमेशा के नहीं उससे नाता तोड़ लिया, उस लड़की से खत्म कर दिया मैंने। और फिर वो दिन आज का दिन है, बताते हैं कि उसको 20 साल हो गए, फिर दोबारा भाई की कभी तबीयत खराब नहीं बगैर किसी ट्रीटमेंट के। तो ये है गुनाहों से मुहाफजत, हिफाजत का तरीका अल्लाह से। कितने कितने चैनल बताए, कितने तरीके बताए कि कितने तरीके होते हैं अल्लाह के। एक साहब थे, उनको बीमारियों से बड़ा डर लगता था, उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि मुझे कोई बीमारी ना लगे, कोई मुसीबत ना आए, मैं फिट रहूं, चलते हाथ पैर मुझे अल्लाह उठाए। हर बंदे को एक खौफ होता है ना कि किसी ना किसी चीज का, तो सबको ही ख्वाहिश होती है। तो बड़े रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगते थे, अल्लाह मुझे इस तरह से रखना, अल्लाह कभी मोहताज नहीं करना। कहते ना अक्सर लोग ही कहते हैं दुआ करें अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे, चलता हाथ पैर उठाए, आम दुआ है। तो फिर उन्होंने खौफ देखा, खौफ देखा, उसमें कहा गया देखो भाई, अगर तुम्हें मुसीबतों से और बलाओं से बचना है, परेशानियों से, बीमारियों से, नागानी आफात से, दुनिया में भी और आखरत में भी, तो गुनाह तो बहुत से हैं, सुनने वाला खौफ है, गुनाह तो बहुत से हैं, लेकिन खास तौर पे जिस गुनाह से तुम्हें बचना है, औरतों से दूर रहना, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी, यानी जो औरत की, जो औरतों के जो मामला है, इनसे अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि इन गुनाहों से अल्लाह को जो जितना अल्लाह का गजब आता है, बहुत कम दूसरे गुनाहों पर इतना अल्लाह को गजब आता है। तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी और दुनिया और आखिरत आफीत से गुजार देंगे अल्लाह पाक। और ये खुद तुम्हारा, ये बात कुरान पाक में भी है, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी है, और खुद तुम्हारा तजर्बा भी है। फिर उनकी आंख खुल गई, उनको सुकून मिल गया, खुश हो गया कि भाई ये मामूली बात थोड़ी है, किसी चीज की फिक्र हो बंदे को और अल्लाह की तरफ से बात आ जाए, देखो भाई हमसे एग्रीमेंट कर लो, एक कुछ लो और कुछ दो, तुम्हें फिक्र है, हम तुम्हारे गमों का वादा करते हैं, तुम्हारी खुशी पूरी करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तो डील हुई है, क्या कहने उस बंदे के, मुबारक बंदे के भाई, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद फिर दोबारा ये ख्वाब रिपीट हुआ, दो बार। फिर उन्होंने कहा मेरा जिंदगी का मकसद ही ये है, सब गुनाह से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खास तौर पर औरतों से भाई मैं बहुत बचता हूँ, बहुत डर लगता है, क्योंकि उनमें गलबा शहवत बहुत है, क्योंकि हर एक का अलग गुनाह का तकाजा होता है ना, किसी के अंदर हराम माल का गलबा होता है, तो हर एक आदमी की मिजाज का और फितरत के हिसाब से गुनाह की शिद्दत होती है। तो उन साहब में शहवत का मादा बहुत था, औरतों की तरफ मिलान बहुत होता था, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उनको बचाने के लिए इस तरह से उनकी गुनाहों से पावत फरमाई। तो एक तरीका नहीं होता, इसी तरह हर इंसान देखे कि उसके अंदर किस गुनाह का ज्यादा गलबा है, बस उससे बचेगा तो अल्लाह पाक उसको आपकी तरफ फरमा देंगे इंशाल्लाह, वो मुजाहिदा है उसका। तलाश करें हम लोग, किसी में गुस्सा है, किसी में शहवत नहीं है इतनी, गुस्सा है, जरूरी गुस्सा रहता है हर वक्त, बस अब उसको जो खुदा मिलेगा, जो उसकी हिफाजत की जाएगी गुनाहों से, अल्लाह को जो करम होगा, आफियत जो मिलेगी उसको, मुजाहिदे से मिलेगी, उसको गुस्से को पीना पड़ेगा, लोगों की खताओं को माफ करना पड़ेगा। तो हर एक का इला, इला कहते हैं जो अल्लाह के अलावा, जो गैरुल्लाह कहलाता है उसे इला कहा जाता है। तो हर एक का जो इला है गैरुल्लाह, वो अलग है, वो तलाश कर रहे हैं हमें, किसी का औरत है, किसी का माल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बस जो चीज मुश्किल लगे जिसको कंट्रोल करना, बस उसको उसको काबू में कर ले, तो इंशाल्लाह उस वसीले से, उस जरिए से खुदा तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह जल्ला जलालुहू ताला शान। इसी तरह जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं उनकी गुनाहों से पावत इस तरह भी की जाती है, कभी कश्फ इल्हाम के जरिए कश्फ हो जाएगा, इल्हाम हो जाएगा, गुनाहों से बचा लिया, कुछ भी आ जाएगा। एक साहब ने बताया कि एक खातून मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उनसे कुछ रस्म राव रस्म बढ़ाने की कोशिश करी, तो ख्वाब मैंने देखा कि मेरे जिस्म पे बर्फ के निशान आते हैं, बर्फ के, और मैं रो रहा हूँ कि अल्लाह ये तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दी, तूने मुझे बर्फ में मुबतला कर दिया। तो आवाज आई कि तू उस औरत की तरफ मिलान कर रहा है ना, तू तुझे अच्छी लग रही है वो, तो जब मैं जब तुझे बर्फ हो जाएगा ना फिर देखता हूँ कौन सी औरत तुझे देखती है। सुबह उठे और सजदे में गिर गए, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा, ना बर्फ हुआ, ना बीमारी हुई, ना वो औरत तक पहुंच सके, बीच में उनका काम उतार दिया गया। ये कहलाते हैं अल्लाह के प्यारे मकबूल बंदे, कि अल्लाह ने उनको तंबीह कर दी। तो जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं अल्लाह उनकी इस तरह हिफाजत करते हैं, गुनाह से पहले उनके ऊपर तंबीह भेज दी जाती है, चाहे वो ख्वाबों की शक्ल में, कश्फ इल्हाम की शक्ल में, किसी शेख की डांट की शक्ल में, या एक सर्वेंट अल्लाह के पास हजारों हथियार है हमारी इस्लाह के लिए, सही है ना। तो अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है तो बड़ा खुशनसीब है, अल्लाह का प्यारा है, और ये अलामत जज्ब में से अल्लाह ने उसको जज्ब किया हुआ, ये अल्लाह का मजहूब है, ये अल्लाह का महबूब है, चाहे मर्द हो या औरत हो, महबूब भी है और मजहूब भी है, अल्लाह का प्यारा है, ये उसके अख्तियार में नहीं है, वो आम लोगों की तरह नहीं, अल्लाह ने उसको अख्तियार दे दिया, जा बेटा मुंह काला कर, ऐश कर, जो करना है आवाज, जब मरेगा तो फिर आना, नहीं, ये उन बंदों में से नहीं है, अल्लाह ने इसकी लिमिटेशन रखी नहीं है, अल्लाह ने उसको उसकी हुदूद रखी नहीं है, उसको वो चाह के भी अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता, वो चाह के भी नहीं बिगड़ सकता, और अल्लाह से मुंह मोड़ के अगर गैरुल्लाह की तरफ आएगा तो जिल्लत मिलेगी उसको। अल्लाह दिखाते हैं कि तूने इनकी खातिर हमें छोड़ा ना, देख मैं तुझे इन्हीं से जलील कराता हूं। मकसद क्या होता है, मकसद क्या होता है इन सब बातों के पीछे, मकसद ये होता है अल्लाह पाक शर्म दिला रहे होते हैं, देख माँ के पेट से मैं तुझे अब तक खिला रहा हूं, अब तक तुझे खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, ऐश खिला रहा हूं, बड़ा कर दिया, तेरी महबूबा तेरी माशूका ने तुझे कभी एक रोटी नहीं खिलाई, जब तू माँ के पेट में था तेरी माशूका महबूबा तुझे नहीं पूछती थी, मैं था किसी को नहीं पता था, तेरी माँ को भी नहीं पता था, उस वक्त मैं था और तू था, उस वक्त मैंने तेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया, माँ की आवन लाल के जरिए तुझे गिजा पहुंचाई, 9 महीने तक तुझे पेट के अंदर रखा, फिर तुझे बाहर लेकर आया माँ के पेट से, और फिर उसके बाद तुझे होश नहीं था, तुझे पता नहीं था, लेकिन तुझे भूख लगती थी, तू रोता था तो तुझे दूध पिलाया जाता था माँ के जरिए से, है तेरी माँ के छाती में हमने जो शीरे मादा रखा, दूध रखा, जिससे तेरी परवान चढ़ी, फिर तू इस तरह तेरी परवान हमने करी, तुझे बड़ा किया, फिर जब तेरा जिस चीज का जब तकाजा था, जो तेरी हाजत थी, हमने तेरी उस ख्वाहिश को पूरा किया, बड़ा हुआ तुझे स्कूल जाने की जरूरत पड़ी, मदरसे जाने की जरूरत पड़ी, तुझे स्कूल में भी हमने दाखला दिलवाया, तुझे अकल भी दिया, तुझे शोर भी दिया, तुझे आंखें भी दी, तुझे हाथ पैर भी दिए, तुझे पागल बना देते हम फिर क्या करते, पढ़ सकता था एक क्लास, मेंटल केस बना देते, कितने पागल पैदाइशी पागल नहीं होते, वो किसी स्कूल कॉलेज के काबिल रहते हैं, तो अल्लाह के कितने एहसान आते हैं, अल्लाह ने हमें अच्छी शक्ल सूरत दी है, अंधा काला लंगड़ा लंगड़ा लूला नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया, ये कोई माशूका कोई महबूब हमारा हम पर एहसानात कर रहा है, ये सबसे बड़ा महबूब हमारा रब है जिसके एहसानात पहले हम दबे हुए, उसके बाद यहाँ तक कि फिर जवानी आती है आदमी की, फिर उसको हाजत होती है शादी की, फिर अल्लाह पाक उसकी शादी कराते हैं, शादी के बाद ख्वाहिश होती है अल्लाह बच्चा नहीं हुआ 4 साल हो गए, फिर अल्लाह पाक बच्चा भी देते हैं, है ना। तो फिर यहाँ तक के जो जो जिस उम्र के जिस हिस्से में उसकी जो जरूरत थी अल्लाह पाक उसको पूरी करते चले जाते हैं, जब उसने बंदे ने अल्लाह को पुकारा जवाब आया लब्बाई क्या अब्दी, बंदे मैं हाजिर हूं बोल, और फिर यहाँ तक के बूढ़ा हो जाता है मरने लगता है, उस वक्त फिर हाजत होती है अल्लाह सारी जिंदगी तो मेरी सुनता रहा, अल्लाह वक्त रुख्सत है बूढ़ा हो गया हूँ, अल्लाह पाक खात्मा ईमान पर सब रोता है तौबा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह माफ कर देते हैं, फिर अल्लाह उसको तौफीक देते हैं नमाज कुरान जिक्र अज़कार की, फिर अपना प्यारा बनाकर खात्मा ईमान पर करके फिर उसको खबर में मुंतकिल करवा देते हैं। तो इसी ही कहते हैं रब 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 की तारीफ क्या है, रब की तारीफ ये है कि जो माँ के पेट में जो नुतफा नापाक जो बंदा बच्चा जो होता है, जब पड़ता है माँ के पेट में रहम में जब टपकाया जाता है, वहां से जो उसकी तरबियत और उसकी पालगत करे परवरिश करे, यहाँ तक के पेट से बाहर निकाल के और खबर तक पहुंचाने तक جو ساری ضروریات کا خیال رکھے اس کو رب کہتے ہیں. رب کی تعریف کیا ہے؟ پالنے والا. اس طرح سے تدریجن تو کون, تو پھر یہ کس کا حق ہے محبت کا؟ یہ دل حضرت والا فرماتا ہے خالق کے دل کو دو, جس نے ماں کے پیٹ میں دل بنایا اس کو دل دو, جس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. شہبت وعدہ ہے کچھ ہے بھائی, کوئی منع نہیں, اللہ کی شادی کر لو, ایک کر لو وعدہ شہبت, دو کر لو, تین کر لو, چار کر لو, مر کیوں رہے ہو؟ خدا کو کیوں چھوڑتے ہو؟ حرام کاری بدکاری کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے حلال مرو کا, تب اللہ منع کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ باپ آپ کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے, مر جاؤں گا, آپ کی طرف نہیں آؤں گا, ایسی مروں گا حرام مرو میں. ابھی اللہ نہ کرے کینسر پیدا ہو جائے, دیکھتے ہیں کون سا محبوب آ کے بچاتا ہے, سب پتنی گلی سے بھاگ لیں گے. کوئی تکلیف آ جائے پھر دیکھتے ہیں سارے معشوق محبوب کہاں چلے گئے. یہ سارا حضرت والا رحمت اللہ ارشاد فرماتے تھے گندم کا فساد ہے روٹی کا. سچے واقعات میں سے کافی صدیوں پہلے حضرت والا نے واقعہ لکھا, عراق کی طرف ایک دفعہ قید پڑا تھا, لوگ بھوک سے مر رہے تھے. اس زمانے میں بڑی زناکاری, شراب نوشی, بدکاریاں بہت تھیں. تو ایک مسٹر عاشق جو تھے وہ مر رہے تھے بھوک سے تڑپ تڑپ کے, لیکن جب قید نہیں پڑ رہے تو زنا بدکاری کے بہت عادی تھا وہ شخص. تو ایک دوست آیا اور مذاق میں چھیڑا, ہم نے آ بھائی کیا حال ہے؟ اب ظاہری بات ہے کئی دن کے فاقے, حالت بری کہ روح اب نکلے, روح نکلے. اس نے کہا یار بھوک سے مر رہا ہوں, بس بولا بھی نہیں جا رہا. اس نے کہا روٹی ووٹی چھوڑ یار, تو حسینوں کا دل دلایا تھا, بلاؤں اس کو؟ اس نے کہا لعنت بھیجو اس کو, ابھی تو روٹی دے دے روٹی, ابھی تو موت آ رہی ہے میری. تو پتہ چلا کہ اب حسن نہیں چاہیے, اب عورت نہیں چاہیے, کیونکہ کئی دن کے فاقے اور پیٹ اندر لگا ہوا ہے. تو پتا چلا گندم کا فساد ہے. روٹی پانی ملتا رہتا نا اللہ کی طرف سے, تو یہ نفسانی خواہشات شیطانیت بڑھتی رہتی ہے. دو چار دن روٹی نہ ملے خدا کی قسم پوچھوں گا کہاں گیا نفس ہمارا, کہاں گئی تمہاری خواہشات. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, اللہ کی کھاتے ہو گاتے نفس اور شیطان کی ہو, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ, صحیح ہے نا بھائی؟ تو اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اسی طرح اللہ کے پیارے پیاروں کو اللہ کس طرح محفوظ کرتے ہیں, تو مختلف کبھی اس میں جو سارے جو واقعات بتا رہے ہیں, کبھی اللہ نے کسی کی سختی سے اصلاح کری, کبھی ڈانٹ کے اصلاح کری, کبھی پیار سے محبت سے شرم دلا کے اصلاح کی. ہر ایک کا الگ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اسی طرح ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت دینی خدمت کیا کرتے تھے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا, رحمت اللہ علیہ ہو گئے وہ. تو ان کے دل میں ایک دفعہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم جو ماشاء اللہ دین کا علم حاصل کر رہے ہو, جو درس و تدریس جو تم کرتے ہو, اور تم نے دین کا اتنا کام کیا کہ تم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے زیادہ تم نے کام کر لیا ہے, یا تم ان سے زیادہ علم رکھتے ہو. دل میں ایک چیز, ان کے آگے بولتے نہیں تھے لیکن دل میں ایک چیز پیدا ہو, تھے اللہ کے مقبول, تھے اللہ کے پیارے مجذوب, بات آ گئی غلط. اب ظاہری بات ہے امام ابو حنیفہ تو تابعین میں سے تھے, تابعین میں سے تھے نا, اور آپ اتنے بات کیے تو پہلے تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا, آپ ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پھر اللہ نے ان کی کیسے اصلاح کی؟ تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کسی سے کہہ دی اپنے دوست سے, بس جیسے ہی کہی اسی وقت اندھے ہو گئے, اسی وقت سیکنڈوں میں. پریشان, یہ کیا ہوا؟ کہہ رہے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. دوست سے کہا کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں پتا. تو پھر رجوع اللہ ہوئے, اللہ والے بھی تھے, مراقبہ کیا, یا اللہ کیا خطا ہوئی؟ پھر دل میں آیا اپنے آپ کو امام حنیفہ سے اوپر یا ان کے برابر کا سمجھتے ہو, شرم نہیں آتی. بس فوراً اپنی غلطی کا ان کو احساس, فوراً توبہ استغفار شروع کری, تو تھوڑی دیر میں ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. تو یہ کہلاتے ہیں اللہ کے خاص مقبول بندے کے اسی وقت سزا ملتی ہے, اور توبہ پر اسی وقت ان کی خلاصی کر دی جاتی ہے, سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے. یہ مجذوب ہونے کی علامت ہے, یہ مقبول ہونے کی علامت ہے, یہ اللہ کا پیارا ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا کہ جاؤ بھٹکتے پھرو, جاؤ مرتے پھرو. کہاں تک بتائیں یہ واقعہ؟ ایک نوجوان ملا, اس نے کہا پتنی کیا بات ہے, جب میں کسی ڈانس پارٹی میں کہیں جانے کا سوچتا ہوں, میں 4-5 ہزار کا ٹکٹ لیتا ہوں, تو جب میں وہاں پہ اس اڈے پہ جاتا ہوں تو پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے. کہہ رہے 3 دفعہ ہو چکا ہے, کہہ رہے میرے پیسے بھی 15-20 ہزار لائے ہوئے, اور آج تک کبھی وہ شو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. کہنے کا دکھ کی بات نہیں ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ پاک تمہیں بدماشیوں سے بچانا چاہ رہے ہیں, बस मैंने कहा लेकिन ये भी हद तक है, अगर वादा रशीद हुआ के भागोगे और गुना कर गएगा तो फिर अपनी पिटाई होगी, फिर उसका भी तसव्वुर नहीं कर सकते, तो लोग रंजीदा हो जाते हैं जी, गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा। अरे भाई शुक्र अदा करो। सही है, इसी तरह बाज लोग होते हैं कि वो मजबूरी का तकवा होता, मुत्तकी होते हैं लेकिन मजबूरी के, भाई चांस ही नहीं मिल रहा तो चलो क्या करें, मुत्तकी बन जाते हैं, है ना। ये थोड़ी है मुत्तकी की तारीफ के, मौका नहीं मिल रहा या गुनाह का चांस नहीं मिल रहा तो मुत्तकी बन गए। मुत्तकी तो उसे कहते हैं जिसको गुनाह की वाफिर मकदार में अपॉर्चुनिटीज मिले, वो चाह के भी गुनाह कर सकता हो और सारे अस्बाब उसके पास हो, फिर वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ में गुनाह से बच जाए, उसे मुत्तकी कहते हैं। ये थोड़ी मौका नहीं मिल रहा तो मुत्तकी बन गए, ऐसा थोड़ी है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानुहु। आज हमारा क्या कमजोर लोगों का क्या तकवा भाई, हम जैसे कमजोर लोगों का तकवा क्या, हम लोग अगर मोबाइल से भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, हम क्या बड़े बड़े मुजाहदात करेंगे। तो हर बंदे की जो आजमाइश आती है उसके ऊपर वो उसके तकवे और ईमान और यकीन के हिसाब से आती है, जिसका जितना ईमानी लेवल होता है, जितना तकवे का लेवल होता है ना। तो ये तो आम लोगों का मामला है कि उनको मोबाइल से बचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई अल्लाह का वली अगर मोबाइल और उसके गलत इस्तेमाल से बच रहा है तो वो उनका कोई बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि उनका बहुत ऊंचा मुकाम है। तो उनकी जो आजमाइश आएगी वो खाली मोबाइल के ऊपर ही नहीं हो, तो छोटी सी चीज है, इससे बचे तो क्या बचे। तो उनको जो अल्लाह आजमाएंगे उनके तकवे की बरकत से, तो बड़ी किसी आजमाइश से आजमाएंगे, चट्टान जैसी कोई भारी कोई गुनाह की उनकी आजमाइश उनके ऊपर आ सकती है, तो उनको उसमें से उसको पार होके निकलना है। तो आजमाइश मौत तक आती है, चाहे गुनाहगार हो, फासिक हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, औस हो, कलंदर हो, मौत तक उसके ईमानी लेवल के हिसाब से, उसके तकवे के हिसाब से। अल्लाह छोड़ते किसी को नहीं है, अल्लाह सबकी आजमाइश करते हैं, और अल्लाह को ये भी पता है कौन मेरी आजमाइश में उतरेगा पूरा और कौन नहीं, लेकिन हमें दिखाना होता है कि तुम खुद अपने आईने में अपनी शक्ल देख लो कि तुम किस मुकाम पे हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, खुद को भी तो बंदे को पता चलना चाहिए ना मैं कितने पानी में हूं। तो अल्लाह पाक वक्तन फवक्तन आजमाइश करते रहते हैं हमारी मुख्तलिफ अंदाज से। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानुहु। इसी तरह जो बहुत से लोग होते हैं ना, वो मोहब्बतों के चक्कर में रहते हैं, तो भाई ये मोहब्बत से परेशानियां बढ़ती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे पता ही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था, यानी आधी दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता फरमाया था। तो कोई कोई उनका आशिक था, उनके हुस्न की तारीफ कर रहा था, कह रहा था मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, कहने लगे तुम सारी बातें कर दो मेरे साथ, लेकिन मेरे आगे मोहब्बत का नाम मत लेना, मुझे मोहब्बत लफ्ज़ से बेवारियत है, चिड़ है। क्यों? कहने लगे जब मैं छोटा था तो अपने वालिद का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बहुत मैं लाडला था, बहुत चाहते थे, तो इसी मोहब्बत की वजह से मेरे सौतेले भाई मेरे दुश्मन हो गए, और फिर इसी मोहब्बत की वजह से हसद पैदा हुआ उनके अंदर, और फिर हसद की वजह से फिर मुझे कुएं में डाल दिया गया, तो मुझे बाप की मोहब्बत ने कुएं में डलवा दिया। इसी तरह उससे पहले जब ये और छोटे थे तो खाला इनसे, खाला या फूफी थी इनकी, वो इनको बहुत चाहती थी, बहुत हसीन थे, खूबसूरत थे, बच्चे थे। अब वहां का कानून ये था अगर जो चोरी करेगा उसको अपने घर में रख लिया जाता था कानून के हिसाब से, तो उसको घर में रहेगा जहां चोरी करी और वहां खादिम बन के रहेगा वो कुछ अरसे तक। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला उनकी खाला भुप्पी ने कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया किसी बहाने से, और फिर कहा कि भाई मैं इसको अपने घर में रखूंगी। तो कई साल तक फिर वो उनके घर में रहे बेचारे, ये कि यहाँ तक के शऊर उनको पैदा हो गया, तो मोहब्बत की वजह का। फिर मेरी खाला ने भी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और फिर अपने घर में उन्होंने मुझसे खिदमत करवाई, बहुत चाहती थी, तो कहेंगे ये दूसरी मोहब्बत की वजह से मैं परेशान हुआ। कहेंगे फिर तीसरी मोहब्बत की वजह से परेशान हुआ, फिर जब भाई उन्हें कुएं में डाल दिया, और फिर इस तरह में फिर मिस्र के बाजारों में जब मैं बिका तो फिर अजीज मिस्र मुझे अपने घर ले गया, तो वहां जुलैखा मुझ पर आशिक हो गई, वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। तो फरमाया कि अगर मैंने उसकी गुनाह की ख्वाहिश को मना कर दिया तो गुस्से में आ गई, वो पूरा वाकया कुरान में मौजूद है। तो फिर आखिर में उसने मुझे कैद खाने में लगा दिया, तो फिर मैं कई साल कैद खाने में रहूं जेल के अंदर इसी मोहब्बत की वजह से, कि मेरे साथ सामने सारी बातें कर लेना लेकिन ये मोहब्बत लफ्ज़ जो है ना मेरे सामने इसका मत हो करना, इस मोहब्बत ने सिवाय तकलीफों के मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत आजमाइश। के, किसके आशिक हो तुम? तुम्हें अपना नफ्स प्यारा है, हम प्यारे हैं, तो आजमाइश है ना, तो उस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, अल्लाह को दिखाना पड़ेगा, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ मैं। बस यही होती है बंदे की तारीफ। और ये एक दो दिन का मसला नहीं, एक दो दिन का मुजाहिदा नहीं है, जब तक के जिस्म से रूह नहीं निकल रही उस वक्त तक अल्लाह को अपनी वफादारी, फिदाकारी, जान इसारी, अख्तर शुमारी पेश करनी है कि अल्लाह पाक मैं आपका ही हूँ, आपका हूँ मैं, बस आपका, कोई लैला नहीं, कोई महमिल नहीं, औरत वाला के शेर। तो बस अल्लाह के आशिकों की यही पहचान होती है, इसलिए औरत वाला फरमाते देखे मेरी आशिकी का मंजर जरा देख ना संभल कर, मेरे खून का बहरे अहमल जरा देख ना संभल कर, मेरी आशिकी का मंजर जरा देख ना संभल कर, मेरी रग से खून रवा है, मेरी रग से खून रवा है, और मेरे गम पर फलक भी नोहा खां है, कि मेरे गम पर फलक भी नोहा खां है, वो भी रो रहा है, मेरी अंदर की कैफियत देख के मेरे ख्वाहिशात इतनी है, मेरा भी दिल चाहता गुनाह करूँ, लेकिन अल्लाह पर फिदा करता रहता हूँ, खामोश रहता हूँ, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलता, ये बातनी शहादत होती रहती, तो मेरा हाल देख के फलक भी नोहा खां है, फलक भी रो रहा है कि इस बंदे की क्या कैफियत है, क्या अल्लाह का आशिक है ये, दिल के परख चौड़ाता रहता है लेकिन गुनाह नहीं करता है, इसका हशर हो गया बेचारे का। इसलिए हजरत वाला फरमाते थे कि अल्लाह एक जान देगा मुजाहिदात के जरिए, लेकिन फिर सैकड़ों जान अल्लाह पाक अता फरमा देंगे, फिर उस सैकड़ों जाने जब अता होंगी तो फिर अल्लाह पाक हजारों मुर्दा जानों में एक नई जान पैदा कर देंगे, कि उसकी सोबत से हजारों मुर्दा दिल फिर अल्लाह वाले दिल बनेंगे। किसी को मुजाहिदा तो करना पड़ेगा ना, अगर सारे एक ही सिस्टम का हिस्सा बन गए तो कैसे मामला चलेंगे, तो दिल पर गम असर उठाना पड़ेगा। जो गुजरना थी गुजर गई दिल पर मगर, जो गुजरना थी गुजर गई दिल पर मगर, तेरी मर्जी के जो बंदे थे लब हिला ना सके, तेरी मर्जी के जो बंदे थे लब हिला ना सके, जो गुजरना थी गुजर गई दिल पर मगर, बस यही अल्लाह के आशिकीन कहलाते हैं, यही मुत्तकीन कहलाते हैं। बाकी जो है बातें बनाने में क्या, बहुत तो बैठे हैं बातें बना रहे, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो मोशन निकल जाते हैं। सादिकीन भी अल्लाह ने उन्हीं लोगों का है, सादिकीन जिनका काल और हाल एक हो, जो कह रहे हो अमल भी हो, वरना अगर काल कुछ और हो और हाल कुछ हो, अमल कुछ हो, फिर वो सादिकीन नहीं है, वो कादिबीन में से झूठे हो लोग, तो उनकी सोबत में अल्लाह नहीं कह रहे जाओ, कादिबीन की सोबत में भेजने का नहीं कह रहे अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं उन सच्चों के पास जाओ जिनका काल और हाल एक हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे सच्चे अल्लाह वाले अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको मौत तक गुनाहों से हिफाजत अल्लाह पाक हमारी रखे, एक आशारिया की अपनी नाफरमानी से अल्लाह पाक हम सबको बचा ले। आखिर हजरत वाला फरमाते थे पाँच अमाल बयान कर दिए, बोलो मौजूद हैं, जो भी इंशाल्लाह पाँच अमाल कर लेगा तो मरेगा नहीं जब तक अल्लाह पाक उसको अपना वली नहीं बनाएंगे, चाहे वो मर्द हो औरत हो। हजरत फरमाते थे छोटी मोटी विलायत नहीं बल्कि विलायत उसमें अल्लाह पाक इंशाल्लाह अता फरमाएंगे। तो पहले पुराने पाक तजवीद के साथ पढ़ने का अहतमाम करें, डेढ़ दो महीने की मेहनत है। नंबर दो, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और आप सुनने ऐसे लोगों देख के जिनकी दाढ़ियाँ मुड़ी थी, वो बड़ी बड़ी मूछे थी, उनको देख के नफरत से मुंह फेरा, उनको हलाकत की बदुआ दिए, तो एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखें और हलाकत की बदुआ से बाहर आएँ, जो आप सुनने दिए अल्लाह सब की हिफाजत फरमा, जो उन्हें दाढ़ियाँ रखनी है उनको वो पूरी करें, अगर एक मुट्ठी से जिनकी कम है, और जिन्होंने रखी एक मुट्ठी दाढ़ी तो वो भी बिल्कुल बेफिक्र होकर ना बैठें, दुआ करते रहें इस्तकामत के साथ, अल्लाह पाक मौत तक कब्र के अंदर ये साथ दाढ़ी को लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। वरना बड़े बड़े दाढ़ी वालों ने भी अपनी दाढ़ियाँ मुड़ा दी। एक नाई ने बताया सच्चे वाक्यात में से, एक साहब आए एक मुट्ठी दाढ़ी और मेरे पास आगे कहने लगे यार ये उन्होंने ये पकड़ी एक मुट्ठी मैं एक मुट्ठी ज़्यादा थी मैं काटने लगा, तो कहेंगे ये क्या करो, मैंने क्या कहा एक मुट्ठी ज़्यादा आपने पकड़ी ना मुट्ठी, तो इसी एक मुट्ठी ज़्यादा वो काट रहा हूँ, कह रहे नहीं ये मुट्ठी पकड़ी है ऊपर से काटो मुट्ठी के ऊपर से, कह रहे मैं हिल गया, कह रहे मैं खुद दाढ़ी मुड़ा लेकिन मेरे हाथ कांपने लगे, मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो आप, ये कह रहे हो उसे आज दाढ़ी साफ कराने आऊँगा, तो कह रहे हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतना एहतराम नाई के दिन, उसने कहा भाई मैं माफ़ कर दो मुझे, मैं ये काम नहीं कर सकता कि आपकी इतनी बड़ी खूबसूरत दाढ़ी और मैं कैसे काट दूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। फिर उनसे लड़ाई हुई, गुस्सा करने लगे, मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, तुझे 500 रुपये दूंगा, तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या मतलब है, बतनी अल्लाह ने क्या इस अजाब की वजह से उनका दिमाग उल्टा हो गया था, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इंसान अपने किसी अमल पर जो है वो सीना चौड़ा ना करे, कुछ नहीं पता कब्र तक ये अमल जाता भी नहीं जाता, इसलिए जो अल्लाह अता फरमा दें शुक्रगुजारी अमल की तौफीक, तो आदमी शुक्र अदा करे कि अल्लाह पाक तूने तौफीक अता फरमाई दी, लेकिन अल्लाह इसको इस्तकामत दे और कब्र तक ले जाने की तौफीक अता फरमाए। कभी किसी को हकीक गुनाहगार को जलील ना समझे कि मैं अच्छा नेक मुत्तकी हूँ बुरा नहीं, तो अल्लाह तौफीक सल्व कर लेते हैं।
एक मुट्ठी दाढ़ी तीन तरफ से रखना वाजिब है, ये रखें। और तीसरा अमल मर्दों की नहीं दी, माफ़ला मिलन काबेरी में नज़ारे के नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में चलाया जाएगा। मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम चल रहे हो जब खड़े हो। तो तीसरा अमल ये हो गया। चौथा अमल है नज़रों की हिफाज़त करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में हुक्म दे रहे हैं, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोमिन मर्दों से कह दिए कि अपनी बाग निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से भी कह दिए कि वो भी अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की बद्दुआ दी है ऐसे लोगों जो लड़कियों औरतों को ना महारिमों को देखते रहते हैं, चलते फिरते मोबाइल में, जैसे भी ये मामूबा खालाबा चचाबा ये चची भाभी और ये मोमानी ता, ये सब ना महारिम रिश्ते होते हैं। हाँ बहुत ही, अगर कोई में से कोई बूढ़ा रिश्ता है कि बिल्कुल कमर झुके मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, इस तरह की कंडीशन है कि आंखों में चीपड़ आ गए तो ये ना, और कमर बिल्कुल झुक गई, ये बूढ़ी घूसट हो गई, तो चलो भाई वो भी वो फर वाजिब नहीं है, तो आप सामने आ गए कोई बात करनी जरूरी है तभी तो समझ में आता है। वरना लोग कहते हैं यार तो चच्ची है तो उम्र रसीद है, तो भाई आजकल की जो आंटी होती हैं वही पार्लर जा जाके अपने आप को टिक टॉक करके रखती हैं भाई, इसलिए नफ़ का मिलान हो सकता है। तो हज़रत पाला रहमतुल्लाह से एक दफ़ा मैंने पूछा था, मेरी नानी एक मेरी मानी थी, उनका इंतकाल हो गया तो उस पर नाराज़ हुई थी जब मैं नए नए हज़रत के पास जा रहा था कि भाई बेटा तुम तो हमारे यहाँ गोदों के खेले हो, तुम तो छोटे बच्चे हो हमारे आगे के, तुम तो हमारे सामने भी नहीं आते, तो तुम अपने शेख से मसला पूछो इस बारे में। मैंने फिर हज़रत के सामने नानी का पैगाम मानी का पैगाम पहुँचाया, तो फिर हज़रत पाला ने फरमाया कि भाई वो ठीक है, उनकी उम्र अगर 60 साल भी अगर है, मुझसे कहने लगे कि क्या वो इस तरह की हैं, झुकी हुई कमर झुक गई है उनकी। मैंने कहा नहीं, कहने लगी क्या बहुत ही झुर्रियाँ पड़ गई हैं चेहरे। मैंने कहा नहीं, कहें देखने में कैसी। मैंने कहा खूबसूरत है, गोरी झुकी है। हज़रत ने पूछा कहेंगे फिर टैक चलती फिरती सही है। मैंने कहा जी हज़रत, तो फरमाया जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। कहेंगे इस कंडीशन की इतनी बुरी औरत हो जाए तो चलो ठीक है इस तरह से। और फरमा दीजिए अगर, फिर हज़रत ने ये भी फरमाया अगर कोई इतनी बूढ़ी औरत भी है और औरत अगर 150 साल की भी हो जाए तो भी उसके बालों का पर्दा फिर भी रहेगा। अगर कितनी कभी किसी इतनी बूढ़ी औरत के पास जाना भी पड़े बात करने के लिए, कोई रिश्तेदार हो कोई हो, तो उस सूरत में बालों का फिर भी पर्दा रहेगा। तो फौरन बूढ़ी औरत को बोलना कि अपने बालों को ढांके, बालों का पर्दा 150 साल की उम्र में भी रहेगा। बालों का ऐसा मामला, क्योंकि हज़रत आलिम भी थे, खाली सूफी बुजुर्ग नहीं थे। तो ये चीज़ है, तो नज़रों की हिफाजत करें, लानत की बददुआ से बाहर आएँ। अभी इंसान हो जाती है बदनज़री या नफ़रत शैतान करा देता है, तौबा में देर ना करें, तौबा करने चलती तो इंशाल्लाह फिर लानत की बददुआ नहीं आएगी। और नंबर 5, दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें गंदे ख्याल से, जानबूझ के दिल में गंदे ख्याल लाना जमाना ऐसे ही शैतान की तरफ से आते रहते हैं, वो एक अलग मामला है, उनको पाक साफ रखें। और पाँचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुराकबत हो वहाँ ताल्लुक कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह थोड़े अरसे में पाँचों माल की तौफीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب الكريم يا رحمن الرحيم يا الله جل جلاله بولا يا سنا يا الله قبول بارگاہ میں قبول فرما لے حال میں ہمارا دل بیٹھنے کی بھی رغبت بھی تو خوشی بھی نہیں یا اللہ قبول بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما نفس و شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ گناہوں سے 100% ہماری حفاظت فرما یا اللہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گندگی کھانے سے روکتی ہے بچاتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے اللہ اسی بھی والا ہماری ہر گناہ سے حفاظت فرما پیار محبت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ کمزوروں والا معاملہ فرما یا اللہ اتنی سختی سے اور اپنی پکڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے ہمارے قلوب میں اپنی اتنی اشد محبت بھر دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اشد محبت بھر دے کہ نفس اور شیطان کی محبت اور گناہوں کی محبت جو ہے وہ اس کے آگے بالکل اقلیت میں شمار ہو اللہ پاک اپنی محبت کا وافر اللہ پاک مقام ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ نفس و شیطان کو کچلنا آسان ہو جائے یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے جو بھی ہمیں محروم نہ جائے دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ جتنے مخلص نادار غریب ہیں ان کو الحال سے غنی فرما یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما अल्लाह जितने भी फलस्तीनी मुकैद हुए हैं अल्लाह उनको जुल्मों सितम का शिद्दत हो रहा है, अल्लाह उनकी बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, औरतों की बहन बेटियों की इज्जतें लूट रही हैं, तो अल्लाह हम मुसलमानों की बेगैरती को अल्लाह बेहसी को ख़त्म फरमा दे, ईमानी गैरत अता फरमा, अल्लाह इन मजलूमों की चीज़ों का 100% बायकॉट करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह तमाम फलस्तीनियों को इज्जत आफियत के साथ उनको कैद खानों से बाहर निकलवा दे, उनको रिहाई दिलवा दे, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा और इस्लाम दुश्मनों को नकबीसों को तबाह बर्बाद कर दे, सतह हस्ती से मिटा दे, इबरत का निशान बना दे, अल्लाह तमाम मत मुस्लिमों को अल्लाह पाक गैरत अता फरमा, अल्लाह यारहमरहमी, अल्लाह मेरे वाले साहब की और मेरे मुशीदी की और हमारे जिंदा महरूमी की कुल मजमून मुमिनात की कुल जुनात की सब की कामिल मफ़रत फरमा, सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा, सबकी नूर से भर दे, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آله